नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको पुनः नमस्कार। मुझे खुशी है कि आप इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसी तरह इस अध्ययन में भाग लेते रहेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पिछले अध्ययन में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय को आरंभ कर चुके थे और आज हम उसी अध्याय में और आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले अध्ययन में परमेश्वर द्वारा इब्राहिम के लिए दिए गए वाचा को स्पष्ट और निश्चित करने के बारे में देखा था। आज हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसके 15 पद से आरंभ करेंगे। तो आइए हम उस पद को पढ़ें और इसे आरंभ करें। और सुन, मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है जब तक उसे पूरी न कर लूँ तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अकेले और घर की याद से परेशान व्यक्ति के लिए एक सांत्वना और सहायता है जो जल्दबाजी में अपना घर छोड़कर आया था। वह एक दूर देश जाने की राह पर है और इसी पहली रात में परमेश्वर उससे कहते हैं, याकूब मैं तेरे साथ हूँ और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। परमेश्वर ने जो दर्शन याकूब को सपने में दिया, एक सीढ़ी थी जो स्वर्ग पर या स्वर्ग तक गई थी। एक सीढ़ी का क्या अर्थ है या इस सीढ़ी का क्या मतलब है? जब प्रभु यीशु ने नथनियल को बुलाया तब उसने इसका अनुवाद किया अर्थात व्याख्या किया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 45 पद से लेकर के 51 पद में पाते हैं। इस सिलसिले में नथनियल, जो एक ज्ञानदंभी था, और जब उसने यीशु को सुना तब उसने कहा, क्या कोई भली वस्तु नासरत से निकल सकती है? और हमारे प्रभु ने इस व्यक्ति से बात की। नथनियल ने पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? और यीशु ने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के वृक्ष तले था मैंने तुझे देखा। नथनेल ने उत्तर दिया, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का राजा है। उसे जीतना थोड़ा आसान था जबकि शुरू में वह संदेह से भरा हुआ था। आइए मैं आपको एक निश्चित बाइबल पद बताऊं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 50 और 51 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के वृक्ष तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। उसने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर नीचे आते और ऊपर चढ़ते देखोगे। मित्रों, वह सीढ़ी क्या है? वह सीढ़ी मसीह है। स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र पर चढ़ और उतर रहे थे। स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा टहल की, वे उसकी आज्ञा के प्रति बाधित थे। नथनेल सीढ़ी के सबसे ऊपर से परमेश्वर की आवाज सुनेगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर मानव जाति से यीशु मसीह के द्वारा बातें कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर के पास सीधे नहीं जा सकते हैं। मैं कहीं न कहीं लोगों को गवाही कहते हुए सुनता हूं कि जब मेरा परिवर्तन हुआ तब मैं सीधे पिता परमेश्वर के पास पहुंच गया या मैं परमेश्वर के पास सीधे पहुंच सकता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम नहीं जा सकते हैं। हमें मसीह में होकर ही जाना होगा और मसीह में होकर ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के पास जाने का यही एकमात्र मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही सीढ़ी है। वह सीढ़ी नहीं जिस पर हम चढ़ सकें, परंतु जिस पर हम भरोसा व विश्वास रख सकते हैं। यह सत्य सबसे पहले याकूब को दी गई थी जो अपहरक था। नथनेल से हमारे प्रभु यीशु ने कहा, देखो वास्तव में एक इसराइली जिसमें कोई कपट नहीं। वह याकूब नहीं था। नथनेल एक ज्ञान दंगी था, वह हास्य रसज्ञ था। परंतु वह याकूब की तरह धोखेबाज नहीं था, परंतु इस व्यक्ति याकूब से परमेश्वर बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उसे ये सुंदर और आश्चर्यपूर्ण महिमापूर्ण प्रतिज्ञाएं दी है, परंतु याकूब को अभी बहुत कुछ सीखना भी है। क्या यह आज आपके लिए और मेरे लिए भी सही नहीं है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर को हमें सिखाना पड़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमें अनुशासित करना पड़े। जिसे वह अपना पुत्र बना लेता है वह उसे कोड़े भी मारता है, वह अनुशासित करता है। उसने ऐसा इब्राहिम और इसहाक के साथ भी किया और वह याकूब के साथ भी करने जा रहे हैं। अब तक सब कुछ याकूब की इच्छानुसार हो रहा था। मित्रों, मैंने एक पत्र प्राप्त किया जो एक परिवार से था जिन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को अचानक रात में मरते देखा। उस समय तक वे अपने इच्छानुसार चल रहे थे। वे कलीसिया के सदस्य तो थे परंतु घमंडी थे। आज भी बहुत से लोग मात्र कलीसिया के सदस्य हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं। परमेश्वर को हमें हिलाना पड़ता है। वह कठिनाई और परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने देते हैं ताकि हमें अनुशासित करें। वे हमें प्रभु में मजबूत होने और विश्वास में स्थिर रहने के लिए बल प्रदान करते हैं। वे हमें उत्साहित करते और हमें परमेश्वर के लिए खड़ा करते हैं। मित्रों, याकूब को अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन आइए हम देखें कि वह क्या करता है। उत्पत्ति 28 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, तब याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। वह डर गया और बोला, यह स्थान कितना भयानक है, यह परमेश्वर के घर के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार ही है। मित्रों, यह परमेश्वर का वचन है जिसे लोग कई बार नई कलीसिया के भवन के समर्पण के समय प्रयोग में लाते हैं कि यह स्थान कितना भयानक है। मैं सोचता हूं कि यह बात कई लोगों को हिला देती है, विशेष रूप से जब कलीसिया के लोग नई सुविधा को परमेश्वर के लिए समर्पण करने में एकत्रित होते हैं और उठकर कहते हैं कि यह कितना भयानक स्थान है। बाद में सेवक उन्हें मित्र बनाने की कोशिश करते हैं यह कहते हुए कि यह स्थान भयानक है। याकूब जैसे व्यक्ति के लिए जो एक पापी है और परमेश्वर से दूर भागना चाहता है। मित्रों, प्रत्येक परमेश्वर का घर और प्रत्येक कलीसिया परमेश्वर से दूर भाग रहे पापी व्यक्ति के लिए एक भयानक स्थान है। यही वो स्थान होना चाहिए जहां एक पापी को परमेश्वर से मिलना चाहिए और परमेश्वर के साथ आमने सामने आना चाहिए, उस सीढ़ी के माध्यम से जिसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया है, जो मसीह है। मित्रों, जब याकूब घर से भागा तो उसे परमेश्वर के बारे में बहुत थोड़ा मालूम था। उसने सोचा कि जब वह घर से दूर भाग रहा है तो वह परमेश्वर से भी दूर भाग रहा है, लेकिन बाद में उसने पाया कि उसने परमेश्वर को घर में ही नहीं छोड़ दिया है। उसने आश्चर्य किया और कहा, निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पर है और मैं इसे न जानता था। और तब हम आगे देखते हैं कि याकूब कसम खाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सुबह याकूब तड़के उठा और पत्थर को जिसे उसने अपने सिरहाने रखा था लेकर स्तंभ के समान खड़ा किया तथा उसके ऊपर सिरे पर तेल डाला। उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। पहले तो उस शहर का नाम लूज था। अब यहां पर याकूब की सुनिए कि उसे बहुत कुछ सीखना है और इसका यह एक प्रमाण है जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं कर रहा हूं उसमें मेरी रक्षा करे और खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट आऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मित्रों, वह क्या कर रहा है? वह परमेश्वर के साथ सौदा करना चाहता है और वह कहता है, अब परमेश्वर यदि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे। परंतु परमेश्वर ने पहले ही उसे कह दिया है कि वह इन प्रत्येक चीजों को पूर्ण करने जा रहा है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और वापस लौटाकर इस देश में लाऊंगा। मैं तुम्हें यह देश दूंगा और तुम्हें बहुत से संतान दूंगा। तब याकूब मुड़कर परमेश्वर के साथ मोल मुलाई करता है कि यदि आप इसे पूरा करेंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। परमेश्वर हम सबसे ऐसा सौदा नहीं करते हैं और न ही उन्होंने याकूब के साथ इस प्रकार का कोई सौदा किया। मित्रों, यदि परमेश्वर ऐसा करते तो शायद ही याकूब कभी उस देश में वापस आ पाता। परमेश्वर ने वापस उस देश में ला पहुंचाया यह सिर्फ उसकी दया और अनुग्रह के द्वारा हुआ। याकूब अंततः जब बेतेल में पहुंचा, वह एक विद्वान व्यक्ति के जैसा था। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों वहां पर वापस आया? ताकि वह परमेश्वर की स्तुति और महिमा उसके अनुग्रह के लिए कर सके। परमेश्वर याकूब के प्रति दयालु बने रहे। मित्रों, आज भी बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु यदि तू मेरे लिए यह कर दे तो मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे मित्रों, आप उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह इस रीति से कोई भी सौदा नहीं करते हैं। वह अपनी दया आप पर और अधिक बढ़ा देंगे और वह आपके लिए दयालुपूर्ण बने रहेंगे बिना आपसे कुछ मांगे ही, अर्थात उसके बदले में वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। परंतु वह कहते हैं, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप वास्तव में उसकी सेवा करना चाहेंगे। वह प्रेम का दासत्व होगा। यह उसी प्रकार का प्रेम है जैसे माता अपने बच्चे से करती है, वह इसकी दास बन जाती है। इसी तरह का प्रेम परमेश्वर मुझ में और आप में देखना चाहते हैं। मित्रों, आइए हम इस अध्याय के आखिरी पद उत्पत्ति 28 उसके 22 को पढ़ें। और वह पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वह परमेश्वर का धाम ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से याकूब उस पत्थर को खड़ा करता है और परमेश्वर के साथ समझौता करना चाहता है। आज भी हम में से अधिक लोग परमेश्वर के साथ समझौता करना चाहते हैं या ये कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा आपका और मेरा पिता होना चाहते हैं। मित्रों, यहां पर हमारा 28 अध्याय समाप्त होता है, इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति उसके 29 अध्याय पर अपना अध्ययन बनाए रखेंगे। इस अध्याय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में कुछ कहा गया है। लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मित्रों, संभवतः इस अध्याय का शीर्षक हमें इस तरह रखना चाहिए, चूजे बसेरा के लिए घर आते हैं। इस अध्याय के आरंभ में हम देखेंगे कि याकूब आरंभ में अपनी बुराइयों की कटनी काटता है। गलतियों की पत्री का यह भाग विशेषकर मसीहियों के लिए लिखा गया है, परंतु यह परमेश्वर की विश्वव्यापी व्यवस्था को आज के युगों के लोगों के लिए भी प्रकट करती है। यह जीवन के किसी भी भाग के लिए सत्य है। यदि आप मकई बोएंगे तो मकई ही काटेंगे। जब आप कपास लगाते हैं तो कपास ही काटते हैं। आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही काटते हैं। यदि आप जंगली घास बोते हैं तो आप जंगली घास ही काटेंगे। मेरे मित्रों, यही उदाहरण इस पवित्र वचन में सब तरफ नियम के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें, मिस्र के राजा फारो ने यहूदियों के पहलौठों को मरवा दिया और उसके बदले में उसका बड़ा बेटा भी तलवार चलाने वाले स्वर्गदूत के द्वारा मारा गया। आहाब के झूठे आरोप में होकर नाबोत मारा गया और उसके खून को कुत्तों ने चाटा। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता एलिय्याह को आहाब के पास संदेश के साथ भेजा कि नाबोत के खून को कुत्तों ने चाटा है और वे आहाब का खून भी चाटेंगे, और यह हूबहू पूरा हुआ। आपको याद होगा कि यह कठोर व्यवस्था दाऊद ने पाई और यह उसके जीवन के लिए भी लागू थी। उसने एक भयानक पाप किया जो वे विचार और हत्या का था, परंतु परमेश्वर ने उसके पापों से उसे माफ कर दिया। फिर भी चूजे उसके घर में बसेरा करने के लिए आए। उसने जो बोया था उसे काटा भी। उसकी अपनी बेटी का बलात्कार किया गया और उसका बेटा मार दिया गया। यहां तक कि पौलुस प्रेरित ने भी इस व्यवस्था के दबाव को महसूस किया। उसने स्तेफनुस को पत्थरवा करने में अपनी सहमति दी थी। बाद में हम देखते हैं कि पौलुस भी लिस्त्रा नगर के बाहर ले जाया गया, जहां पर लोगों ने उस पर पत्थरवा किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मित्रों, याकूब इस कठोर और संस्थापित व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। याकूब अपने समझ के द्वारा जीवन जीवा। वह अधिक घमंडी और चतुर था। उसने धोखा देने का अभ्यास भी किया था। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीच हरकत करने व झुकने के लिए भी तैयार था, और वह अपनी चतुराई पर घमंड करता था। परंतु जो कुछ वह बो रहा है उसे वह काटना पड़ेगा। जब हम इस अध्याय में आते हैं तो देखते हैं कि याकूब बेतेल को छोड़कर पुनः अपनी यात्रा को आरंभ करता है और कुछ समय के बाद वह हारान में पहुंचता है। उसे कितना समय लगा यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर उत्पत्ति 29 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, तब याकूब अपनी यात्रा पर निकला और पूर्वियों के देश में पहुंचा। उसने दृष्टि करके देखा कि मैदान में एक कुआं है और भेड़ों के 3 झुंड उसके पास बैठे हैं, क्योंकि लोग उसी कुएं से उन्हें पानी पिलाते थे। कुएं के मुंह पर रखा पत्थर तो भारी था। जब सारे झुंड वहां एकत्रित हो जाते थे, तब लोग उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ों को पानी पिलाते थे और उस पत्थर को कुएं के मुंह पर फिर रख देते थे। मित्रों, यहां पर हम पानी का महत्व उस देश में देख सकते हैं। आज भी पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। हो सकता है कि इसकी सुरक्षा की जाती थी और बहुत संभल कर पानी खर्च किया जाता था। इसलिए एक निश्चित समय पर दिन में एक बार कुएं का पत्थर हटाया जाता था और जब सब भेड़ पानी पी चुकी होती थी, तब फिर से पत्थर को कुएं पर रखकर बंद कर दिया जाता था। मित्रों, अब यहाँ का दृश्य यह है कि पत्थर के हटाने से पहले ही याकूब कुआं के पास पहुंचता है और मेरा विश्वास है कि पहले की तरह अभी भी वह चालाक है। उत्पत्ति उसके 29 अध्याय के 4-5 पद में लिखा है, तब याकूब ने उनसे कहा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। मित्रों, वे उसे जानते थे, परंतु याकूब अभी तक उसे नहीं जानता था, लेकिन वह उसके साथ रहने जा रहा है। फिर आगे उत्पत्ति 29 अध्याय के 6-7 पद में लिखा है, तब उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से हैं? उन्होंने कहा, वह सकुशल हैं, और देख, उसकी पुत्री राहेल भेड़ बकरियों को लेकर आ रही है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, यह पशुओं को इकट्ठा करने का समय नहीं है, भेड़ों को पानी पिलाओ और जाकर उन्हें चराओ। यहां पर हम देखते हैं याकूब बस थोड़ी देर पहले यहां पहुंचा है और अब उन्हें कह रहा है कि कैसे भेड़ों को पानी पिलाना है और उन्हें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में यह उसकी विशेषता है। हम उत्पत्ति 29 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सारे झुंड इकट्ठे होते हैं तभी कुएं के मुंह पर से पत्थर लुढ़काया जाता है और हम भेड़ों को पानी पिलाते हैं। तब हम लोग आगे देखते हैं कि याकूब राहेल से मिलता है और उत्पत्ति उसके 29 अध्याय और 9 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह उनसे बातचीत कर ही रहा था तो राहेल अपने पिता के भेड़ों के साथ आ गई, क्योंकि वह एक चरवाहिन थी। मित्रों, राहेल एक चरवाहिन थी जो भेड़ों की देखभाल करती थी और उन दिनों में यह औरतों का काम हुआ करता था, जैसा कि आज भी कई जगहों पर होता है। अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, जब याकूब ने अपने मामा लाबान की पुत्री राहेल और अपने मामा की भेड़ों को देखा, तो याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर लुढ़का दिया और अपने मामा लाबान के झुंड को पानी पिलाया। मित्रों, मैं नहीं जानता कि उसने किसने कहा कि लाबान के भेड़ों को पानी पिलाए, परंतु उसने ऐसा किया। याकूब किसी की व्यवस्था का अनुसरण नहीं कर रहा था, परंतु वह अपनी ही चाल चल रहा था। उसने अपने लिए कुछ खेल के नियम बनाए हैं, जिसमें से होकर उसका जीवन गुजरा, जो उसके जीवन का पहला भाग था। उसे एक महान सीख सीखनी थी, जिसे उसका मामा लाबान अब सिखाने वाले हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। मित्रों, यह पद मेरे लिए हमेशा से ही अनभिज्ञ रहा है। मेरे लिए समझ पाना वास्तव में कठिन है कि लड़की को चूमना और चिल्ला कर रोना यह सब क्या है। जो भी हो, मेरा अपना विचार है कि याकूब बहुत दिनों से घर के बाहर अकेला था, जब से वह घर से निकला था, इसलिए थोड़ा भावुक हो गया था। हमें इस बात को याद रखना है कि उसे बेतेल से गलील के झील अर्थात समुद्र से ऊपर जाना है, ऊपर सीरिया तक जाना था। उसे वह मरुभूमि और निर्जन क्षेत्र पार करना था। मैं मानता हूं कि इस दौरान उसे मार्ग में बहुत से अनुभव मिले होंगे, इसलिए जब वह यहां पहुंचा तो बहुत साहसी बन चुका था और उन चरवाहों से मिला जैसे वह उन्हें पहले से ही जानता हो। वह उनसे प्रश्न पूछता है। इसके बाद संभवतः अनौपचारिकता के तरीके से वह कुएं के मुंह के पत्थर को हटाता है। मैं सोचता हूं कि जब उसने राहेल को चूमा, जो उसके माँ के घराने की थी, तो वह भावुक होकर रोने लगा। यही एक तरीका है जिसके द्वारा मैं आपको बता या समझा सकता हूं, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि जब उसने दूसरी बार उसे चूमा होगा तो वह नहीं रोया होगा। हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं। याकूब ने राहेल को बताया कि मैं तेरा फुफेरा भाई अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब वह दौड़कर गई और अपने पिता को यह बताया। मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि वह अपने आप को उसके पिता का भाई कहता है। इब्रानी लोगों में इतना अधिक रिश्ता का अंतर नहीं था जैसे कि आज हम लोग करते हैं। अब हमें नीचे की ओर आकर देखना है कि यह अपनी चचेरी बहन को चूम रहा है या नहीं। उन दिनों में यदि आप एक संबंधी हैं तो आप वह उसके भाई होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अनुवाद किया गया है और यह बिल्कुल सही है, परंतु हम हिंदी में कहते हैं कि वह उसके पिता का भगीना था और वह रिबका का पुत्र था, उसके पिता की बहन का पुत्र। आगे हम देखते हैं कि याकूब लबान से मिलता है, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, तब ऐसा हुआ कि जैसे ही लबान ने अपने भांजे याकूब का समाचार सुना तो वह उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसे गले लगाकर चूमा और अपने घर ले आया। तब याकूब ने लबान को अपना सब वृतांत कह सुनाया। मित्रों, मैं यह कल्पना करता हूं कि याकूब ने सिर्फ एक ही अंश के बारे में बातचीत की होगी। मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि वह खाते समय लोगों का मनोरंजन कर रहा था। अपनी कहानियों को उन्हें बताकर कि उसने कैसे पहलौठेपन का अधिकार पाने के लिए क्या क्या किया और पिता के आशीर्वाद को पाने के लिए उसने कौन सी चाल चली और सब कुछ करने के लिए वह कितना चतुर था। संभवतः उसने बेतेल में बिताए गए रात्रि के बारे में भी उन्हें बताया। उसने लाबान को ये सारी बातें बता दी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लाबान ने उससे कहा, निश्चय ही तू मेरी हड्डी और मांस है। तब याकूब उसके यहाँ एक महीना रहा। अब लाबान को निश्चय हो गया कि वह उसका भांजा है और उसने कहा, तू मेरा रिश्तेदार है, इसलिए अंदर आ और हमारे साथ रह। अब एक महीना पूरा हो गया और अब ध्यान दीजिए कि क्या होता है। याकूब कुछ काम नहीं कर रहा है, वह उसका भांजा है और दूर देश से यहाँ पर मामा के पास मेहमान होने के लिए आया है। मैं समझता हूँ कि उसने सोचा होगा कि वहाँ उसे रहने के लिए मुफ्त में कमरा और भोजन मिलेगा, और इस दौरान वह एक महीना घर में था। वह राहेल को आकर्षित करने में लगा हुआ था। वह ज़रूर उस ओर अपनी नज़रों को लगाता था जिधर से वह आना जाना करती थी, और मैं सोचता हूँ कि राहेल भी अवश्य ही इसकी ओर देखती होगी। अब मैं इस प्रकार से कल्पना करता हूँ कि एक सुबह नाश्ते के समय और एक घटना घटित होती है, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं। तब लाबान ने याकूब से कहा, क्या तू मेरा कुटुंबी होने के नाते मुक्त ही मेरी सेवा करता रहे, मुझे बता तेरी मजदूरी क्या होगी। मित्रों, मामा लाबान भी चतुर ही हैं। उसने काम पर जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, याकूब ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए मामा लाबान बहुत ही व्यवहारिक तरीके से कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि याकूब बिना कुछ लिए मुफ्त में उसके लिए काम करे। वह कहता है कि याकूब के कार्यों के लिए वह कीमत चुकाएगा। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आप लाबान के घर में एक महीना भोजन के पैसे का प्रबंध किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मामा लाबान भी बहुत चतुर हैं और अब वह अपने भांजे के साथ वार्तालाप करने जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 16 पद में लिखा है, लाबान की दो बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। अब यहां पर हमें लाबान की दूसरी बेटी लिया से भी परिचय कराया गया है। मामा लाबान उसे देख रहे थे कि वह याकूब उसकी छोटी बेटी राहेल को ज्यादा पसंद करता है। तब हम आगे देखते हैं उत्पत्ति 29 अध्याय के 17 पद में, लिया की आंखें धुंधली थी परंतु राहेल देखने में सुडोल और सुंदर थी। राहेल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी परंतु लिया धुंधली आंखों वाली थी, इसका मतलब वह उतनी सुंदर नहीं थी। बाइबल महाविद्यालय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें यूनानी भाषा अध्ययन करने का मौका मिला, जहां पर फरात के कुछ खेलों के नाम थे, और जब वह उस लड़की के बारे में कुछ अच्छा कहना चाह रहा था तो हमने पाया कि खेल खेल में वह उसे गाय की आंख कहकर पुकारता था। मैं हमेशा इसके बारे में सोचकर हंसता रहा और मैंने सोचा कि मैं अपने मस्तिष्क में इसे बदल दूंगा इससे पहले कि कोई शिकायत के रूप में इसे ले ले। तो मित्रों, अब अगली बार जब आप बाहर निकले तो गाय की आंख को देखें और आप पाएंगे कि वे सुंदर हैं। जब से मैंने इस खेल को पढ़ा है, मैं गाय की आंख में कुछ कुरूपता नहीं देखा, परंतु लिया गाय आंख वाली नहीं थी, वह धुंधली आंख या कोमल आंख वाली या नाजुक आंख वाली थी, जिसका मतलब है कि वह ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो इस प्रकार लाबान की ये दो पुत्रियां थी और यह सच है कि याकूब राहेल से प्यार करता था, इसलिए आगे हम देखते हैं कि याकूब राहेल को पाने के लिए काम करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 18 पद में लिखा है, याकूब तो राहेल से प्रेम करता था, अतः उसने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तक तेरी सेवा करूंगा। हम पाते हैं कि याकूब तेज आंख वाला था, इसलिए सुबह जब नाश्ता के समय मामा लाबान ने उसे काम पर जाने के लिए सलाह दी तो उस समय उसके मन में कुछ था। वह यह जानता था कि याकूब राहेल से प्रेम करता है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वह याकूब के उत्तर से कुछ अचंभित हुआ। जब उसने याकूब से पूछा कि उसकी मजदूरी क्या होगी और याकूब राहेल के लिए 7 साल सेवा करने के लिए तैयार था और यह व्यक्ति लाबान एक कठिन तोलमोल कर रहा था। मित्रों, हम आगे उत्पत्ति 29 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, लाबान ने कहा, ठीक है, उसे किसी पराया पुरुष को देने से तो यही उत्तम है कि मैं उसे तुझे सौंप दूं, अतः मेरे साथ रह। लाबान ने सौदा स्वीकार कर लिया। अब अगला पद हमें एक बहुत ही सुंदर बात याकूब के बारे में कहता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि याकूब के पहले के जीवन में जो कोई भी चीज आई वह सुंदर ही थी या अच्छी थी। राहेल के प्रति उसका प्रेम बहुत प्रभावशाली था। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय और 20 पद में पढ़ते हैं, इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक सेवा की और राहेल से प्रेम के कारण ये वर्ष उसे थोड़े ही दिन जान पड़े। मित्रों, आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं कि वह काम कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मामा लाबान कठिन काम करवाता था। उसने ठंडी, गर्मी और बरसात काल में भी काम किया, सिर्फ हमेशा राहेल के बारे में सोचता और काम करता रहता था। और उसके कठिन परिश्रम के बाद दिन में राहेल उससे मिलती थी और याकूब उसके साथ बहुत दिल से प्रेम करता था। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 21 और 22 पद को पढ़ते हैं, याकूब ने लाबान से कहा, मेरी सेवा की अवधि पूरी हो चुकी है, अब मेरी पत्नी मुझे दे कि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबान ने उस स्थान के सब लोगों को एकत्रित कर दिया और एक भोज दिया। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम यहीं पर ठहर जाते हैं और अगले अध्ययन में हम फिर से इसके आगे के विषयों पर विचार करेंगे। कृपया आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपने मित्रों को भी अवश्य प्रोत्साहित करें। अपनी समस्या या प्रार्थना के विषय हमें अवश्य लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।